ओम शांति। कुछ प्रश्न से शुरुआत करें क्योंकि आप सब बहुत गहरी याद की स्थिति में। हम सब बाबा के पास क्यों आए हैं? चलिए अब चिंतन शुरू करें। क्यों आए हैं बाबा के पास? 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए जी, और अत इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए बाबा के पास आए हैं, और बस दो ही, स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए आए हैं। और अच्छा, दूसरा प्रश्न है इसके साथ साथ, कर्मातीत कौन बनेंगे? कर्मातीत कौन बनेंगे? हम सबका लक्ष्य है ना कि हम कर्मातीत बने। बड़ी दादी जी ने भी अपने अंतिम समय में धुन लगाई थी और हम सबके लिए प्रेरणा छोड़ के गई हैं। धुन कौन सी थी बड़ी दादी जी की? कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। हम सबके लिए भी वो वर्षे में ये छोड़ गई हैं। हम सबके पास भी यही धुन होना चाहिए, हम भी कर्मातीत बने। लेकिन कर्मातीत कौन बनेंगे? कौन बनेंगे कर्मातीत? जो बाबा के जो कर्म योगी होंगे वही कर्मातीत बनेंगे। ये बाबा के महावाक्य हैं। हम सबका ध्येय है कि हम कर्मातीत बने। लेकिन यदि हमें कर्मातीत बनना है तो हमें कर्म योगी बनना होगा। और इसी के साथ पहले प्रश्न का भी उत्तर जुड़ा हुआ है, हम बाबा के पास इसलिए आए हैं। बहुत सारे आंसर हैं, आप सब जो भी देंगे वो सही आंसर होंगे, लेकिन उनमें से एक आंसर ये है कि हम बाबा के पास इसलिए आए हैं ताकि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें। कर्मों के बंधन से मुक्त। संसार में भी जो लोग हैं वो भी कर्म कर रहे हैं और हम भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्म बांध रहा है उन्हें, इसीलिए वो उलझते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं और जीवन से हार करके कहते हैं कि हे प्रभु उठा ले। हम भी कर्म करते हैं लेकिन हमारी कर्म के साथ बंधन नहीं है। बाबा ने हमें सिखाया है कैसे कर्म करना है, और जब हम कर्म योगी होकर कर्म करते हैं तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त रह पाते हैं। क्योंकि ना तो कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता और ना ही कर्म के परिणाम का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता। ये गीता का बहुत सुंदर सार है, भाव है कि कर्म ऐसे करो कि उसका प्रभाव तुम पर ना पड़े, अलिप्त। कर्म को अर्पित करते हुए चलो, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोगों को कर्म योग की ओर बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये हमारा ध्येय है। कर्मातीत बनना हमारा ध्येय है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होते हुए जीवन मुक्त स्थिति तक पहुंचना ये हमारा ध्येय है। सतयुग में हम जीवन मुक्त बनेंगे वो तो है ही, लेकिन उस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कहाँ करना है? अभी करना है ना? संगम युग में ही वो स्थिति का अनुभव, अभी तो हम अपने आप को जीवन मुक्त बनाना है। क्यों आवश्यक है कर्म योगी बनना? इनके साथ साथ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम कोई भी कार्य करना तब तक शुरू नहीं करते जब तक कि उसकी इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह नहीं समझ लेते। उसकी महत्ता जब अच्छे से हमारी समझ में आ जाती है तब हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में आगे बढ़ता है। क्यों हमें कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है? चिंतन अवश्य करें इस पे। क्यों कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है? क्यों? कर्म बंधन मुक्त होंगे जिससे हम लोगों ने शुरुआत की, इसलिए कर्मयोगी बनना आवश्यक है। चारों ओर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है जो हमें भी अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हमें संसार के प्रभाव से, संसार की नेगेटिविटी से मुक्त रहना है तो हमें कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है। 63 जन्मों के जो विकर्म हमारे साथ चले आ रहे हैं उन सबको नष्ट करने के लिए, दग्ध करने के लिए हमें कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है। आधे एक घंटे बैठ करके हम योग करें और उससे हमारे पूरे 63 जन्मों के विकर्म नष्ट हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यदि हमें लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट जाना है, जल्दी से जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, तो हमें कर्मयोगी बनना होगा। और कर्मयोगी बनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब हम कर्मयोगी हैं हमारा तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। तब बाबा हमें जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां यूज कर पाएंगे। यदि हमारा तार ही नहीं जुड़ा हुआ है, यदि बाबा से जो हमें कराना है, बाबा को जो हमसे कराना है वो हमें टचिंग करना चाहते हैं कि ये कार्य करो, और यदि हम कहीं और एंगेज हैं तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि हमें बाबा का सच्चा सच्चा इंस्ट्रूमेंट बनना है, आने वाले समय पे बाबा जिस रूप में जहां भी हमें इस्तेमाल करना चाहे कर सके, यदि हम ऐसा चाहते हैं कि मैं भगवान के काम आ जाऊं, तो हमें कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि यदि हम खुद को समझना चाहते हैं, परमात्मा को समझना चाहते हैं, या इस सृष्टि के गुह्य रहस्य को समझना चाहते हैं, केवल बाहरी बाहरी तौर पे नहीं, बाहरी तौर पे तो हम लोगों ने पहले दिन ही समझ लिया, पहले हफ्ते ही समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव बाबा हैं और ये सृष्टि चक्र ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन इसकी डेप्थ को यदि मुझे जानना है, मैं हूं कौन, पूरे साइकिल में मेरा क्या पार्ट रहा है, या बाबा है कौन जिसको बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही जानते हैं, हमारे लिए चैलेंज है, राइट, चैलेंज है ना अनिल भाई, हमारा पिता है, हमने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है, हम उनके यज्ञ में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही जानते हैं। जब हम कर्म योगी बनेंगे, उनके साथ मन के तार जुड़े रहेंगे, जब उनके अंग संग रहेंगे, तब हम उन्हें जानते जाएंगे। अभी केवल हम लोगों का परिचय है, जैसे यहाँ भी आप जो भी बैठे हुए हैं मोस्टली आपका परिचय है, एक दूसरे का परिचय है हम लोगों से, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तब हम एक दूसरे को समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं कैसा हूं, मेरे संस्कार क्या है, मेरे स्वभाव क्या है, मेरी रुचि क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, सब चीजें हम तब समझ पाते हैं जब हम साथ रहते हैं। अदरवाइज दूर दूर से मुझे परिचय है कि हाँ इनका नाम ये है, इतने साल से ये समर्पित हैं, फलानी जगह से आए हैं, ठीक वही चीज ये कर्म योग करता है। यदि हमें सचमुच इसे बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, यदि मुझे खुद को समझना है, परमात्मा को समझना है और इस सृष्टि चक्र की भी गहराई को समझना है, तो मुझे कर्म योगी बनना होगा। बिना कर्म योग के, बिना इस संसार से डिटैच हुए, अनासक्त हुए, बिना उससे मन के तार जोड़े, बिना उस बीज को पकड़े, हम इस चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें कर्म योगी बनने की आवश्यकता है। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, चलिए हमने महत्ता समझ ली, इसलिए बहुत सारी महत्ताओं की लिस्ट हो सकती है, कैसे बनेंगे एक बात, बहुत सारी बातें इसमें भी हो सकती है, सबका अपना अपना चिंतन होता है और सब कुछ यथार्थ है, कोई भी गलती नहीं होती हमारे ज्ञान में। एक बात मेरे व्यक्तिगत चिंतन से एक आधार है कर्म योग का, वो है प्यार। आप सब महसूस करते हैं इस चीज को, जिससे हमारा प्यार होता है ना, उसकी याद बिल्कुल सहज रहती है, स्वतः रहती है, उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको बाबा कहते हैं कि यदि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं करने की जरूरत है, और यदि मेहनत कर रहे हो याद की तो जरूर मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी है। हम सबको इस चीज का अनुभव है ना, जिससे हमारा प्यार है ऑटोमेटिक हमारा बुद्धि योग वहां चला जाता है, जुड़ जाता है। मजनू को जब चारों तरफ लैला ही लैला दिखाई दे सकती है, या मीरा को जब चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे सकते हैं, प्यार था ना, तो हमें चारों तरफ बाबा ही बाबा क्यों नहीं दिखाई दे सकते। हर पल हमें उनकी याद, हर कर्म में हमें उनकी याद क्यों नहीं आ सकती। हमें पूछना है अपने आप से, क्या भक्तों का प्यार हमारे प्यार से कहीं ज्यादा था, ज्यादा था ऐसा तो लगता है, तब तो वो डूबे रहते थे ना। डूबना, प्यार में डूबे रहना, जिसको बाबा का ही महावाक्य है, एक के प्यार में डूब जाना ही संपूर्ण ज्ञान और सहज राजयोग है। संपूर्ण ज्ञान है यदि तुम एक के प्यार में डूब गए हो तो, और यही राजयोग है। और बाबा ने दूसरे शब्दों में भी इसे कह दिया कि लव ही लक के लॉक की है। यदि तुम भाग्य अपना बनाना चाहते हो, श्रेष्ठ भाग्य अपना बनाना चाहते हो सारे कल्प के लिए, प्यार उसकी चाबी है। एक से प्यार। और हम सबको ये पूछना है अपने आप से, मेरे दिल का कितना गहरा प्यार है। जहां जहां मेरा प्यार है वहां वहां मेरे संकल्प जरूर जाते हैं। किसी भी रूप में प्यार, उसको अटैचमेंट आप कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी ये है वहां मेरे मन के तार, मेरे संकल्प जरूर जाएंगे। अब इससे चेक कर लें कि मेरा उससे प्यार कितना है। कई बार मैं हंसी में कहता हूं कि जब हनुमान से ये कहा गया कि तुम्हारे दिल में कौन है, तो उसने दिल अपना सीना चीर के दिखा दिया ना कि हाँ देखो केवल यहाँ राम बैठे हुए हैं। यदि हमसे लोग कहें कि तुम्हारे दिल में कौन है, जरा चीर के दिखाओ, यदि हम चीर के दिखाएं तो क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? हाँ आवाज नहीं आ रही है। ये टेकिंग है ना? यदि अभी कोई मुझे कहे कि अपना सीना चीर के दिखाओ, अंदर कौन बैठा हुआ है, क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल 100% जैसे हनुमान ने चीर के दिखा दिया कि लो देख लो कि अंदर श्री राम बैठे हुए, क्या मैं ऐसे चीर के दिखा सकता हूँ और ये कहूँ कि देखो अंदर केवल एक राम बैठे हुए हैं, एक बाबा बैठे हुए हैं? ऐसा हम पूरे 100% दावे के साथ कह सकते हैं? और जब तक नहीं कह सकते, इसका मतलब है चेकिंग की बात है। हम सबको चेक करना है सूक्ष्म में कि अंदर और कौन कौन बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि 4-5 लोग और बैठे हुए हैं कि नहीं हम भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हम भी बैठे हुए हैं, और राम के साथ साथ और कई लोग दिखाई देने लगे। प्यार, गहरा प्यार, ये चेकिंग है। यदि मुझे कर्म योगी बनना है, यदि मुझे डूबे रहना है, तो मेरे दिल का सच्चा प्यार उसके साथ हो। और यदि प्यार बढ़ाना है तो हम प्राप्तियों को याद करें। वही तो है ना जिसकी हमें तलाश थी जन्म जन्मांतर से, वही तो है जो मुझे सब कुछ देने वाला है, वही तो है जिसने मेरा सारा कल्प सुहेला बनाया है, वही तो है जो मेरे प्राणों का आधार है। उसे यदि मैं अपने जीवन से माइनस कर दूं तो मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता। जो मेरा आधार है जीवन का, जो मेरे सारे कल्प को इतना श्रेष्ठ बना रहा है, जिसके कारण मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, उसे मैं कितना प्यार करता हूं। वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। कहते हैं ना बाबा, तुम बच्चों के बिना बाबा का भी दिल नहीं लगता। बाबा तो तुम बच्चों की ओर ही देखता रहता है, तुम बच्चे ही बाबा के संसार हो। जब बाबा ये कहते हैं, क्या हम भी दिल से ये कहते हैं कि हाँ बाबा आप भी हमारे संसार हो? पूछना है। तो पहली बार यदि मेरा प्यार गहरा है, मेरा प्यार यदि 100% है, डेफिनेटली वो मेरी याद को सहज कर देगा। दूसरी बात है लक्ष्य। यदि मैंने लक्ष्य रखा, जिसको बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्य होंगे वैसे लक्षण आएंगे, क्या मैंने लक्ष्य रखा है कि मुझे कर्म योगी बनकर रहना है, कर्मातीत बनना है? लक्ष्य होगा तब तो लक्षण आएंगे। यदि लक्ष्य ही नहीं है तो ठीक है, जैसा रूटीन है वैसे रूटीन में हम आए, बैठ गए, योग किया, जितना भी लगा ओके, हम बैठे उससे हम संतुष्ट हो गए, क्या ये हमारी संतुष्टि है? यदि लक्ष्य ऊंचा है, कर्मातीत बनने का लक्ष्य है, कर्मयोगी बनने का लक्ष्य है, तो हम जरूर प्लान करेंगे और प्लान करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक सुंदर लक्ष्य हमें कर्मयोग की ओर ले चलता है। कहते हैं लक्ष्य ऐसा बनाओ, ऐसा ऊंचा लक्ष्य बनाओ जो लक्ष्य तुम्हें खींचे, व्यर्थ से मुक्त कर दे, व्यर्थ से मुक्त कर दे। किसी धावक को आपने देखा इधर उधर देखते हुए? नहीं ना? जब वो दौड़ता है 100 मीटर की दौड़ दौड़े या 400 मीटर की दौड़ दौड़े, केवल अपने लक्ष्य की ओर देखता है, इधर उधर नहीं देखता। और न ही जो दौड़ रहे हैं उनके साथ उनसे पूछता है कि भाई आज नाश्ते में तुमने क्या किया, या तुम शाम को डिनर में क्या करने वाले हो, या वीकेंड में तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कहाँ घूमने जाने वाले हो, क्या दौड़ते दौड़ते ये पूछता हुआ चलता है वो? नहीं, केवल उसे उसका लक्ष्य दिखता है। क्या मैं भी पूरी तरह फोकस्ड हूँ अपने लक्ष्य पे कि मुझे ये बनना ही है? जब ऐसा एक कमिटमेंट होगा ना, जैसे मरुस्थल में एक प्यासे पथिक की कल्पना कीजिए आप, मरुस्थल में एक पथिक भटक गया है, एक राहगीर भटक गया है, उसे बहुत तेज प्यास लगी है, उसकी मनसा में केवल पानी पानी और पानी है कि मुझे पानी चाहिए, और कुछ चीज उसे याद नहीं है। केवल पानी, क्या ऐसी तड़पन मुझे भी अपने लक्ष्य के लिए है? जब ऐसे कर्मातीत बनने की तड़पन, ऐसे कर्मयोगी बनने की तड़पन हमारे अंदर होगी, तो निश्चित रूप से हम कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे और कर्मातीत बनेंगे। विचार कीजिएगा इस पे, बहुत बड़ा विषय है लक्ष्य, फिर भी संक्षेप में मैंने आपके सामने रखा है। और तीसरी बात, खुद पर विश्वास, विश्वास रखना कि मैं कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कर्मयोगी बनूंगा और कर्मयोगी बन करके मैं कर्मातीत स्थिति को अवश्य प्राप्त करूंगा। विश्वास, कई बार हमारा विश्वास जगमगा जाता है कि हम लक्ष्य तो बनाते हैं कि हम 8 घंटे योग करेंगे, हम लक्ष्य तो बनाते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते असफल होते हैं, हमारा विश्वास जगमगा जाता है और हम सोचते हैं कि रहने दो। या कई बार जब अच्छा लक्ष्य बना के हम शुरुआत करते हैं तो माया और ज्यादा हावी हो जाते हैं, पता है ना, ऐसा अनुभव है ना, जिसको बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो, गेट के बाहर माया खड़ी हुई है, वो भी सुन रही है, जैसे ही गेट से बाहर निकलोगे वो तुम्हारी परीक्षा लेगी। तो हम एक लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, उसके बाद इतनी सारी परीक्षाएं आती हैं कि हम सोचते हैं कि अरे टारगेट बनाना या लक्ष्य बनाना, उससे तो और ज्यादा माया हो जाती है, इसलिए छोड़ो। विश्वास, विश्वास अपने ऊपर हम करें कि हम बनाएंगे, हम जीतेंगे, विघ्नों को पार हमने ही किया है और हमें भी करना है, बाबा हमारे साथ है। कोई मुझे शाबाशी दे या ना दे, मैं अपनी पीठ खुद ही ठोक लूं कि शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे लड़ रहे हो, माया से तुम्हें ही जीतना है, तुम्हें ही मंजिल पर पहुंचना है, अपने आप को शाबाशी देकर अपने विश्वास को हम मजबूत करें, तो हम कर्म योग के पथ पर, योग के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज अभ्यास, अभ्यास और अटेंशन। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान। जितना हम अभ्यास करेंगे, गहरा अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा कर्मयोग दृढ़ होता जाएगा, परिपक्व होता चलेगा। अभ्यास, पांडवों को जब 13वां उनका वर्ष था, उनको अज्ञातवास में रहना था, तो बहुत जंगलों में वो भटका करते थे, तो उन्होंने जंगलों में कुटिया बना ली हुई थी। अब रात को अर्जुन को आवाज आए कहीं से, मतलब किचन से आवाज आई, उनको लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया है, जाके देखता हूँ किचन में। अब जब वो किचन में गए, बहुत घना अंधकार था, अंधेरा था, उन्होंने लाइट जलाई। जब लाइट जलाई उन्होंने, तो देखा कि भीम जो है वो खा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, भैया इतनी रात को खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतनी अंधेरे में आप कैसे खा रहे हैं, आपको चीजें दिखाई कैसे दे रही हैं? तो भीम ने कहा, अर्जुन अभ्यास, ये मेरा अभ्यास है। मैं रात को भी जब मुझे भूख लगती है, तो तुम लोगों के नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं किचन में आता हूँ और बिना लाइट जलाए, लैंप जलाए, मैं चीजों को, मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ है, हाथ डालता हूँ और खा लेता हूँ। अभ्यास, तो अभ्यास से जो चीज दूसरे के लिए कठिन है वो हमारे लिए सहज हो जाती है। तो जितना योग भी एक ऐसा विषय है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सरल और सहज होता जाएगा, जस्ट हमें अटेंशन रखने की जरूरत है। इन चारों बातों पर भी आप जरूर विचार कीजिएगा, जिससे हमारा कर्म योग इजी होता चलेगा, सहज होता चलेगा, और हम दूसरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे अपने सारे दिन की दिनचर्या में। आप अपने हर कर्म के साथ कोई ना कोई अभ्यास जोड़ करके रख सकते हैं, इजी हो जाएगा ये आपके लिए। जैसे जैसे ही आपकी आंख खुली, ये सब आप लोग सहज रूप से कर सकते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुले, हमने सामने बाप दादा को देखा, बाबा सामने हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे विजयी भव, अमर भव, बाप समान भाव, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, या उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। जैसे ही आंख खुली, बाबा से मिलन से शुरुआत, और मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान भी करूं कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बाबा मेरे सामने हैं। आंख खुलते ही भगवान जिसके सामने हो, उससे श्रेष्ठ भाग्य तो किसी का हो ही नहीं सकता। सुबह आंख खुलते ही अपने कर्मों के साथ हम अलग अलग अभ्यासों को ऐड करते चलें, राइट। जैसे हम योग के लिए आते हैं, 1 घंटे हमें योग के लिए बैठना है, अपने 1 घंटे के समय को या 45 मिनट के समय को हम 15-15 मिनट में बांट लें, पहले 15 मिनट में बाबा से रूह रिहान हमने कर ली, अगले 15 मिनट में हमने रूहानी ड्रिल कर ली, अगले 15 मिनट में हमने अपने आप को पूरी तरह एकाग्र कर लिया परम धाम में, या पांचों स्वरूपों की हमने ड्रिल कर ली, लक्ष्य बना करके योग में बैठेंगे, योग आपके लिए सहज हो जाएगा। वैसे जब हम चल रहे हैं, चलते समय हम ये अभ्यास कर सकते हैं, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूँ। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो न केवल अपने इस चेहरे को देखूं, लेकिन इस चेहरे के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, मैं उस आत्मा को भी देखूं कि मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ स्टार हूँ, चमकती हुई बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, राइट। जब हम कपड़े चेंज करते हैं ना रोज, जब हम कपड़े चेंज कर रहे हैं तो भी कभी अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास कर लें, कभी अपने देवताई ड्रेस को धारण कर लें। वैसे जब कभी हम झाड़ू लगा रहे हों, जब कभी हम बर्तन धो रहे हों, तो न केवल बाहर से हम झाड़ू लगाएं या बर्तन धोएं, अंदर भी हम सफाई करें। जब कभी हम सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो सीढ़ी को याद कर लें, 84 की हमारी जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को याद कर लें कि कैसे हम चढ़े थे, कैसे हम उतरे हैं। सिमिलरली बाबा की एक बहुत विशेष बात रही, देखिए मम्मा और बाबा हमारे आदर्श हैं। यदि उनके जीवन को गहराई से आप देखें तो आप पाएंगे कि मम्मा बाबा ने अपने हर कर्म को, लौकिक कर्म को भी अलौकिक में परिवर्तित कर दिया था, हर लौकिक कर्म को मम्मा बाबा ने। जैसे बाबा को आप जानते हैं, जब भी बाबा एरोप्लेन को देखा करते थे तो बाबा कहा करते थे कि बच्चे क्या करो, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन जैसे उड़ रहा है वैसी ऊंची अवस्था तुम्हारी भी होनी चाहिए, राइट। जब कभी बाबा गाय को देखा करते थे तो कहा करते थे कि देखो गाय जैसे जुगाली करती है भोजन करने के बाद, घास खाने के बाद, तुम भी ज्ञान सुनने के बाद जुगाली करो, राइट। कछुए को बाबा देखा करते थे, कहते थे देखो कछुए में कितनी सुंदर बात है कि जब कभी भी उसे लगता है कि बाहर खतरा है या जब कभी वो चाहता है अपनी सभी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, वैसे तुम भी कछुए के समान बनो। हर लौकिक कार्य को यदि आप देखें बाबा के जीवन को, बाबा ने लौकिक कार्यों को अलौकिक में परिवर्तित किया, यहाँ तक कि अपने नींद के समय को भी बाबा ने योग निद्रा में तब्दील कर दिया ना। इसलिए बाबा सो रहे हैं ऐसा कभी कोई नहीं कहता था, बाबा आराम कर रहे हैं या बाबा समाधि में हैं, क्योंकि योग युक्त रहा करते थे। इतना ज्यादा कर्म योग पर ध्यान, जब तक हम चैतन्य स्थिति में हैं तब तो हम योग करें ही, लेकिन जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तब भी हम योग करें। और ये विषय आज इसलिए विशेष करके मैंने लिया क्योंकि इसे विशेष पिछले साल भी पास में हम लोगों ने प्रोजेक्ट के तौर पे लिया था और इस साल भी हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, न केवल कर्म योग लेकिन योग के साथ प्रयोग। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हम सब ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं, बहुत सुंदर दो बाबा के महावाक्य हैं इसके लिए। बाबा ने कहा है, आप विचार कीजिएगा, कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना कर्म का कोई महत्व नहीं है। ये भगवान के महावाक्य हैं और कितना गहन है। कर्म तुम कर रहे हो लेकिन यदि उसमें योग नहीं है तो वो कर्म निष्फल है, या उस कर्म का कोई महत्व नहीं है, या फिर वो कर्म साधारण है। वैसे ही दूसरा महावाक्य बाबा ने कहा है, जब तुम याद में रह करके कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म यादगार बन जाते हैं। देखिए श्रीनाथ द्वारे में आप जानते हैं कि हर कर्म की पूजा होती है श्री कृष्ण के, बाबा के हर कर्म की पूजा किस लिए हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने हर कर्म में याद को समाया। कुछ भी कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, याद में रह के कर्म किया वो यादगार बन गए। हम भी यदि याद में रहकर कर्म करेंगे तो हमारे कर्म भी यादगार बनते जाएंगे और साथ ही वो कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। लेकिन आज मैं विशेष एक दूसरी चीज पे आप लोगों का ध्यान और खिंचवाना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रोजेक्टर की मैं मदद ले रहा हूँ। पिछले वर्ष जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया, कर्मयोग और साथ ही योग का प्रयोग, प्रयोग की बात जहाँ आती है वहां शायद हम लोगों का ध्यान कम है, इसलिए आज विशेष करके इस विषय को मैं प्रकाश में ला रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि अब संसार में समस्याएं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं और हम बाबा के बच्चों की जिम्मेवारियां अब आगे चल के और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। बाबा ने वर्षों पहले ये महावाक्य कहा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि योगी तो सभी हो लेकिन अब प्रयोगी भी बनो। प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए से नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें और इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से सेफ भी रहते हैं। तो खुद भी सेफ रहते हैं माया से और साथ ही साथ उस प्रयोग के माध्यम से दूसरों का भी कल्याण करते हैं। तो बाबा के इस महावाक्य के अनुसार जब हम लोगों ने ग्रुप में कार्य किया तो इतने सुंदर रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, वो रिजल्ट भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ ताकि आप प्रेरित भी हों और स्वयं भी इसका इस्तेमाल करें। हम लोगों ने ये एरिया चुने थे जहाँ हमें योग का प्रयोग करना, योग हम करते आ रहे हैं, जब से हम बाबा के बने हैं हम योग कर रहे हैं, लेकिन उस योग को हमें बढ़ाना है क्योंकि जितना गहरा योग होता है उतने ही आप योग में, योग के प्रयोग में सफल होते हैं। इसलिए मैंने कर्म योग का विषय लिया कि जितने अच्छे हम कर्म योगी होंगे, जितनी निरंतरता हमारे योग में होगी, जितनी गहराई होगी उतनी ज्यादा हम अपने योग के प्रयोग में सफल होंगे और आने वाले समय में आत्माओं की इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। हमने कुछ फील्ड लिए थे जो आप देख रहे हैं, जैसे शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां या एडिक्शन जो अलग अलग प्रकार के शराब के, नशीले द्रव्यों के सेवन के लोगों में आदत होती है, या फिर कुछ कमजोरियां हैं, कुछ वाइसेस हैं अर्थात विकार हैं, अपने स्वयं के विकार, संबंधों में सकारात्मकता लाना, बिजनेस में यदि नुकसान हो रहा है तो उसे ठीक करना, जॉब या फिर स्टडीज, ये फील्ड हम लोगों ने प्रयोग के लिए चुने हुए थे। और इसमें पहला जो आप देख रहे हैं फिजिकल इलनेस, इसमें बहुत सारी बीमारियों के नाम ऊपर आप देख रहे हैं, उसमें जैसे माइग्रेन है, डबल निमोनिया है, थायराइड है, स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो बीमारियों के रूप में आज आपके सामने आम रहती हैं, इनके लिए कुछ योग के अभ्यास किए गए, जैसे एनर्जी देना अपने ब्रेन को या फिर पानी को चार्ज करके पीना, कुछ स्वमानों की प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ अपने विचारों में परिवर्तन लाना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, रिजल्ट इसके बहुत सुंदर मिले हुए हैं। मैं आप लोगों को एक एक अनुभव, ये सारे अनुभव हैं जो आप देख रहे हैं आगे, एक अनुभव जो न्यूजीलैंड से हमारे पास आया, इनको डबल निमोनिया था और ये ठीक से लगभग ना सो ही नहीं पाते थे, इनको बैठे ही रहना पड़ता था, 24 घंटे 7 दिन बैठे ही रहना पड़ता था, ऐसी इनकी हालत हो गई थी। इनके पास जब ये अभ्यास किया गया, 2 वीक लगभग इन्होंने अभ्यास किया तो रिजल्ट आप देख रहे हैं राइट साइड में जो रिजल्ट लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा, इनके डॉक्टर ने ही कहा कि मेडिसिन ने नहीं लेकिन मेडिटेशन ने आपको ठीक होने में मदद की है। वैसे ही नीचे आप देख रहे हैं इंदौर से हमारे पास अनुभव आए थे, वैसे ही हमारे पास अपूर्वा जी का अनुभव था और साथ ही अन्य अनुभव जिसमें अलग अलग जो बहुत ही क्रिटिकल बीमारी, शारीरिक बीमारी जिसको आप कहते हैं, वो चाहे वो एपिलेप्सी है, चाहे कोमा में जाना है, चाहे फिर कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए भी किसी के लिए 15 दिन, किसी के लिए 1 मास, किसी के लिए 3 मास योग के प्रयोग किए गए और वो लोग अपनी बीमारियों से बाहर आ गए। ये रिजल्ट हमारे पास पिछले साल आए, कितनी सुंदर बात है ना? आप जानते हैं कि अब जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन फेल होते जा रहे हैं, लोग दवाइयां खाते हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, अब योग असर दिखा रहा है। इसीलिए बाबा का ये महावाक्य विशेष करके हम लोगों ने लिया अपने प्रयोग के लिए कि योगी तो हो लेकिन अब प्रयोगी भी बनो, क्योंकि इन प्रयोगों की अब आवश्यकता है। वैसे मेंटल इलनेस के लिए भी बहुत सारी मेंटल इलनेस आप जानते हैं, यदि आप, जयंती दीदी आए थे कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे तो वो शेयर कर रहे थे कि यदि वहाँ यूरोप में आप अपने घर की छत पे खड़े हो जाएं तो आपके घर के सामने से यदि 4 लोग निकलते हैं तो उसमें से हर चौथा व्यक्ति मेंटल पेशेंट होता है। भारत में भी ये स्थिति बढ़ती चली जा रही है, हर चौथा, हर पांचवा या हर छठवा मेंटल पेशेंट है। मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है या अनिद्रा की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, ये सारे मानसिक रोग हैं। और इन मानसिक रोगों में भी योग का जो प्रयोग किया गया उसमें 70-80% तक फास्ट इम्प्रूवमेंट देखे गए हैं, और साथ ही साथ बहुत कम ऐसे केस रहे हैं जहां पे असफलता मिली हो। लगभग लगभग योग के माध्यम से संपूर्ण सफलता मिली है। केवल एक आपके सामने मैं एग्जांपल रखना चाहूंगा, अलवर से जो हमारे पास ये आया था, एक बहन का अनुभव आया था। उन्होंने लिखा था कि 20 साल से लगभग उनको ये मानसिक बीमारी थी, उनकी बहन को, और उस मानसिक बीमारी में ये होता था कि वो दूसरों मोहल्ले में निकल जाती थी, किसी के भी घर के सामने जाके उनका दरवाजा खटखटाने लगती थी, चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, घर में भी बुरी अस्त व्यस्त रखती थी, लड़ाई झगड़े, चिल्लाना, रोना, चीखना, मांगना, और जानवरों की तरह खाना, ऐसे नहीं खुद नहीं लेकिन जैसे जानवर खाते वैसा। मतलब लोग ये कहते थे कि आप इन्हें किसी हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं करा देते। उन्हें जयपुर के भी सुंदर से सुंदर हॉस्पिटल में, दिल्ली के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया गया, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आया। जब उनसे ये अभ्यास कराए गए, योग के भी सुंदर अभ्यास, लिखने की प्रैक्टिस कराई गई, और साथ ही उन्होंने पीस ऑफ माइंड चैनल देखा, देख करके भी बैठती थी, देखती थी, लिखने की सुंदर प्रैक्टिस करती थी, योग का थोड़ा थोड़ा उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया, रिजल्ट आपके सामने है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब वो पूरी तरह से शांत हो गई है, लोगों से उसने मांगना छोड़ दिया है, और साथ ही साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है उसका जीवन, बिल्कुल नॉर्मल। अब वो खुद भी भोजन बनाती है और साथ ही साथ दूसरों को खिलाती भी है। ऐसी एक सुंदर मानसिक स्थिति उसकी बन गई है। मैं ये क्यों सुना रहा हूँ आप लोगों को, लोग होपलेस होते जा रहे हैं बाहर। अब 20 साल से ये स्थिति थी, आस पड़ोस वाले भी बिल्कुल परेशान थे कि आप इन्हें कहीं दाखिल करा दीजिए मेंटल हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो ठीक नहीं हो रही थी। योग के अभ्यास से 3 मास में ये स्थिति ठीक हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है। मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि जैसे प्रारंभ में बाबा ने साक्षात्कार के माध्यम से अपने कार्य शुरू कराए थे, और अंत में भी एक साक्षात्कार का दौर चलेगा जिसमें संसार की सभी आत्माएं बाबा के पास आएंगी, लेकिन उससे पहले ये एक ऐसा दौर है जब आत्माओं की मनोकामनाएं योग से पूर्ण होंगी, और इसमें हमें मदद करनी है उन आत्माओं की योग का प्रयोग करके, तब तो उनका विश्वास जागृत होगा ना। आज आप देखें, लोग बाबा हमेशा कहते हैं, अभी कहना बाबा ने पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन ही दिया है, कहा है कि अब सुनने सुनाने का समय नहीं है, आत्माएं अनुभव करना चाहती हैं। और जब हम योग युक्त होकर जब ये बातें उनसे कहते हैं, उनके दिल को छूती हैं ये बातें, और जब वो अभ्यास करना शुरू करते हैं, उनको सुंदर रिजल्ट मिलते हैं और वो बाबा के पास चले आते हैं कि भगवान ने हमें ठीक किया। यही वो दर है जहाँ से हमारा कल्याण हो सकता है। ये फीलिंग, ये भी बाबा के साथ जोड़ने का एक सुंदर माध्यम है कि हम योग का प्रयोग करें और आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ें। मेंटल इलनेस की और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिप्रेशन है, लोनलीनेस है या होपलेसनेस है, ये सारी चीजें भी पहले लोगों में थी। अनुभव आप देख रहे हैं, नाम सहित मैंने यहाँ रखा है, यदि आप लोग चाहें तो उसे बाद में देख सकते हैं। इन सब के जीवन में बहुत शांति आ गई है, खुशहाल जीवन हो गया है, डिप्रेशन से बाहर आके अब वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ये है सुंदर योग का प्रयोग जिसको हम लोग कर सकते हैं। एडिक्शन में भी मैं विस्तार नहीं ले रहा हूँ, एडिक्शन कई प्रकार के हैं, लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं इससे, चाहे वो अल्कोहल का हो, सिगरेट का हो, या मोबाइल फोन का हो, या फिर इंटरनेट का हो, ये भी आजकल एडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इससे भी मुक्त होने में योग का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी सारी अनुभव आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, किसी ने नॉनवेज छोड़ दिया, और वो भी थोड़े ही समय में। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कईयों के जीवन में जो ये एक बुरी बात थी कि शराब के बिना वो रह नहीं पाते थे, सिगरेट के बिना वो रह नहीं पाते थे, उन्होंने अपने जीवन में जस्ट 21 डेज बहुत अच्छे योग का अभ्यास किया, और उन्हें वो मानसिक बल और शक्ति प्राप्त हो गई कि वो अब अपने इन तकलीफों से मुक्त हैं। यदि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, हम भी उन्हें इस रूप से मदद कर सकते हैं कि आप ये करके देखें, सुंदर योग का अभ्यास भी कराएं, पानी चार्ज करके पीना सिखाएं, ब्रेन को एनर्जी देना सिखाएं। साथ ही साथ एक विशेष चीज और भी कि परमात्मा से यदि उनका कनेक्शन हम जुड़वा पाएं और ये उन्हें महसूस करा पाएं कि ये सब चीजें जो आप ले रहे हैं वो चीजें आत्मा के लिए, या शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, ऑटोमेटिक उस चीज से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। वैसे स्टडीज में हमने बहुत ज्यादा वो किए, प्रयोग किए। आप जानते हैं आजकल बच्चों की प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन या मेमोरी उनकी बहुत डाउन होती जा रही है, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति जो है या उनकी परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें लो होती जा रही हैं। जैसे ही वो योग का प्रयोग करते हैं इन सब चीजों में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। और इसके रिजल्ट हमारे पास इतने सारे हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। एक रिजल्ट जिसमें 10th क्लास की एक लड़की ने 100 out of 100 स्कोर किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बहुत ज्यादा जो बहुत कमजोर थे मैथमेटिक्स में 28 मार्क्स आए थे, अब उनके घर वाले परेशान थे कि क्या होगा इनका। उन्होंने राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास किया, उनके ऊपर कुछ प्रयोग किए गए और ये 28 जो है वो रिवर्स हो गया, 82 हो गया सेम ईयर में, केवल 2 मास के सुंदर अभ्यास के बाद। कितना बड़ा चमत्कार है। तो क्यों ना हम सब भी ना केवल अपने आप को एक अच्छी से स्थिति में बना तैयार करके या अच्छी स्थिति बना करके लोगों को प्रेरित करें, लेकिन इन प्रयोगों को करने में उन्हें हम मदद भी करें। साथ ही जॉब के लिए भी बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, जॉब भी लोगों को बहुत अच्छे से प्राप्त हो गए हैं। यदि किसी को जॉब नहीं हो आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जस्ट 21 डेज अच्छा योग का अभ्यास किया और 22nd डे से आपको विश्वास नहीं होगा ये सारे एक्सपीरियंस जो आप यहाँ देख रहे हैं। एक ने किया, उनका नाम है रमेश यादव, उन्होंने ये अभ्यास किया और 21 दिन अभ्यास करने के बाद 22वें दिन जो लास्ट आप देख रहे हैं उनके पास 4-5 मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफर थे। 22वें दिन उन्होंने फोन किया और यही पूछा कि मेरे पास 4-5 ऑफर हैं, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा ज्वाइन करूँ और कौन सा ज्वाइन ना करूँ। पहले ये लाले थे कि कहीं से तो कुछ हो जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन योग के अभ्यास के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बाबा की मदद है और ये समय की एक प्रकार से एक लहर है। यदि हम इस लहर को समझें कि एक ऐसा वक्त है जबकि आत्माओं को जो चाहिए वो चीजें जब उन्हें प्राप्त हो जाती है तो वो बाबा से या परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो क्यों ना उनकी समस्याओं को दूर करने में, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में हम योग का इस प्रकार से अभ्यास करें और उन्हें मदद प्रदान करें। ये सारे एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर से सुंदर एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल यदि प्रॉब्लम है बिजनेस में, उसमें फायदे हुए हैं लोगों को। साथ ही रिलेशनशिप यदि खराब है, आजकल आप जानते हैं सास बहू के झगड़े हो या परिवार में बहुत झगड़े हो चलते रहते हैं, इसके भी बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंस हैं कि थोड़े अभ्यास के पश्चात ही रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ होते गए हैं। अपनी कमजोरी को यदि दूर करना हो तो कमजोरियों को दूर करने के लोगों के बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात, यदि हम कोई विशेष कला, कोई विशेष योग्यता, कोई विशेष क्षमता अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, चाहे वो लिखने की योग्यता हो, चाहे हमें भाषण करने की योग्यता हो, या फिर हमें एक जीतने की सफलता प्राप्त करने की हो, या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की हो, कोई भी प्रकार की कला हम विकसित करना चाहते हैं, वो कला भी योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। तो विशेष करके जो अलग अलग चीजें हम लोग कर रहे हैं, मंथली हम लोगों ने थीम बनाए हैं, वो सारे थीम हैं जिसके ऊपर विशेष कार्य चल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा विशेष अंत में, एक जिस पे हम सबका विशेष ध्यान हो वो ये कि हमें संपन्न और संपूर्ण अपने आप को बनाना है, कर्मातीत बनाना है, तो हम कर्म योग के पद पर बहुत गहराई से आगे बढ़ें, बहुत अपने आप को कमिट करें। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सेवाएं ऐसी हैं जो समय आने पे संपूर्ण हो ही जाएंगी, बाबा वो करा लेंगे किसी ना किसी को निमित्त बना करके, लेकिन जहां तक संपन्नता की बात है, संपूर्णता की बात है, वो मुझे खुद ही करना है। इसलिए मैं अपने आप को अब झोंकूं, मैं अपने आप को अब एकाग्र कर दूं और अपने आप को पूरी तरह बाबा के साथ जोड़ के, बाबा के साथ योग युक्त होके, कर्मयोगी बनके अपने इस पथ पर आगे बढ़ूं, तो गहन से गहन मुझे खुद भी अनुभव होंगे और दूसरी आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भी मैं मददगार होऊंगा। और ये सारे योग के प्रयोग भी मैं स्वयं व्यक्तिगत लेवल पे कर सकता हूँ और दूसरी आत्माओं को भी मैं इस रूप से कराऊं कि वो भी बाबा के साथ जुड़ते चले। क्योंकि जब अनुभव प्राप्त होता है तो क्या होता है, हमारा निश्चय और गहरा हो जाता है, लोगों का निश्चय और गहरा हो जाता है कि सचमुच यही है, यही है। ये बात तभी निकलेगी जब ये अनुभव लोग करना प्रारंभ करेंगे कि हर जगह जाकर के हम हार गए, हमें कहीं पे भी हमारी जो अंदर की चाहना थी वो पूर्ण नहीं हुई। ये वो जगह है, ईश्वर का दर है जहाँ आके हमारी चाहना पूर्ण हुई। तो कर्म योग के पद पे भी आगे बढ़ें और साथ ही प्रयोग करते हुए सब आत्माओं का कल्याण करें, ऐसी आप सबसे शुभकामनाएं। ओम शांति।